नमस्कार भारत, 29 जून दिन बुधवार, मैं हूं संदीप सोनी। तुर्की के इस्तांबुल में अतातुर्क हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 36 लोगों की मौत, कई घायल।
3 tane valizim vardı. Sardırıyordum onları. Tam sardırmaz bir bomba.
एनएसजी और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के बड़े-बड़े दावों की कांग्रेस ने हवा निकाली।
ना डिफेंसिव, मैंने पहली दफा माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा, वो शेर जो गरजता था, शेर को मैंने एक बूढ़े शेर की शक्ल में देखा।
तनातनी के बाद चीन ने कहा भारत के साथ लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। सुनिए मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ित अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। खेल समाचार और समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। तुर्की के इस्तांबुल शहर में अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिदायीन हमला हुआ है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि इस हमले में अब तक करीब 36 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 फिदायीन हमलावरों ने इस्तांबुल में मुख्य हवाई अड्डे पर गोलियां चलाईं और खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि हमले को देखकर ये लगता है कि ये हमला चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों का खून बहाकर तुर्की के खिलाफ साजिश की जा रही है। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने हमले की निंदा की और हमले में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई है। अमेरिका और इस्तांबुल के बीच इस हमले को देखते हुए सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रेक्सिट के फैसले के बाद पहली बार यूरोपीय संघ के नेताओं से ब्रसल्स में मुलाकात की है। डेविड कैमरन का कहना है कि बाहर रहते हुए भी ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बेहतर और नज़दीकी रिश्तों की उम्मीद करता है। वहीं यूरोपीय नेताओं ने ब्रिटेन से यूरोपीय संघ छोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की अपील की है। लेकिन डेविड कैमरन ने ब्रसल्स में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं में लिस्बन संधि के तहत ब्रिटेन के बाहर होने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जल्दबाजी नहीं दिखी।
Well, I think what you might have read and seen about a clamor for Britain,
जो आपने देखा और पढ़ा होगा कि ब्रिटेन पर अनुच्छेद 50 जल्द लागू करने का दबाव है, तो बैठक में ऐसा कुछ नहीं दिखा। मेरे साथियों में से ज्यादातर ने बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ये चाहते हैं कि यूरोप के साथ भविष्य में ब्रिटेन का रिश्ता कैसा हो, इसकी रूपरेखा जल्द तय हो जाए। ये थे डेविड कैमरन के शब्द। इस बीच ब्रिटेन में मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को धोखा नहीं देंगे। यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए प्रचार में ढिलाई बरतने के आरोपों से घिरे कॉर्बिन के खिलाफ 40 के मुकाबले 172 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जाम्बिया में पुलिस ने एक बड़े अखबार के संपादक को उनकी पत्नी और एक डिप्टी संपादक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जाम्बिया के राजस्व प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते पोस्ट नाम के इस अखबार को ये कहते हुए बंद करवा दिया था कि अखबार पर कई लाख डॉलरों का टैक्स बकाया है। हालांकि अखबार के प्रबंधन का कहना है कि ये टैक्स का मामला नहीं, बल्कि अगस्त में होने वाले चुनाव से पहले प्रेस की आज़ादी को रौंदने का मामला है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच बसे तुर्की में कमाल अतातुर्क नाम के एक राष्ट्रवादी नेता हुए हैं, जिन्होंने 1920 के दशक में तुर्की को अपने प्रयासों से एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के तौर पर पहचान दिलाई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में कमाल अतातुर्क के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां लगभग 6 घंटे पहले एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें अभी तक कम से कम 36 लोग मारे गए हैं और 60 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक तुर्की के इस्तांबुल शहर स्थित अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि तीन हमलावरों ने कलाश्निकोव बंदूकों से हवाई अड्डे के प्रवेश पर अंधाधुंध फायरिंग की और बम धमाका किया है। केप टाउन से आए दो पर्यटक पॉल और सूजी हवाई अड्डे पर धमाके के वक्त मौजूद थे। उन्होंने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि काले कपड़े पहने एक शख्स के हाथ में बंदूक थी जिससे वो फायरिंग कर रहा था। एक अन्य चश्मदीद उस्मान ओकार ने आंखों देखा हाल बीबीसी को बताया। मैं अपने तीन सूटकेस लेने जा रहा था जब मैंने धमाका सुना। पुलिस ने हमें जमीन पर लेट जाने को कहा। सामान को बांधने वाली मशीन स्टील की थी जिससे हम सब गोलीबारी से बच गए। वो पुलिस पर गोलियां चला रहे थे और पुलिस उन पर गोलियां चला रही थी। हमारे पास खड़े एक व्यक्ति को गोली लग गई और हमने देखा कि एक्सरे मशीन में बम फट गया। वहां मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। हमले के बाद की तस्वीर संडे टाइम्स अखबार की पत्रकार लुई कैलेगन ने बीबीसी के सामने रखी।
As I'm walking along the road towards Atatürk Airport, I can see that the roads are closed off for almost all vehicles apart from emergency response.
अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। सिर्फ आपात सेवा में लगे वाहन ही वहां आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने अपने सिर के ऊपर से कई हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा है। हमने हवाई अड्डे का चक्कर लगाते हुए कई विमानों को देखा है जिन्हें शायद उतरने नहीं दिया जा रहा। हवाई अड्डे की तरफ कई लोग भाग रहे हैं और अफरा तफरी मची हुई है। इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ शाहीन ने हमले की पुष्टि करते हुए तीन आत्मघाती हमलावरों के शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों की जानकारी भी थी।
Yolcu karşılama salonu girişinde sayısını 3 olarak değerlendirdiğimiz
Vasip Sahin ne kaha shuruaati jankari ke mutabik ab tak is hamle mein 28 logon ki maut hui hai aur kareeb 60 log ghail hue hain. Inhe aspatal le jaya ja raha hai. BBC samvaddata Mark Loven ke mutabik ye ek suniyojit hamla lagta hai. हमले के वक्त अतातुर्क हवाई अड्डे पर एक विमान के अंदर मौजूद मार्क लॉवन ने कहा कि इस तरह के कई हमले तुर्की में हाल के समय में हो चुके हैं।
No, that is the tragic thing is that within the space of the last year there has been a wave of attacks across the country.
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुर्की में पिछले दो साल में इस तरह के कई हमले हुए हैं। कुछ हमलों के लिए इस्लामिक स्टेट तो कुछ हमलों के लिए कुर्द संगठनों जैसे कि पीकेके या फिर उसके सहयोगी दलों को जिम्मेदार माना जाता है। अंकारा और इस्तांबुल जैसे शहर पर्यटकों को निशाना बनाने के लिए हमले का शिकार होते हैं क्योंकि ये हवाई अड्डा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ठिकाना है जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए यहाँ हमले की आशंका बनी रहती है। वहीं इस्तांबुल स्थित लेखक और विश्लेषक गैरेथ जेनकिंस ने बताया कि अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
तुर्की के इस्तांबुल में कमाल अतातुर्क हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 36 लोगों की मौत, 60 घायल। रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। अगली खबर भारत से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का दम भरते हैं, विपक्षी कांग्रेस उन दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही कल तब नजर आया जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सुनिए वात्सल राय की रिपोर्ट।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर नाकाम बताया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले गरजने वाले प्रधानमंत्री अब रक्षात्मक हो चुके हैं।
ना डिफेंसिव, मैंने पहली दफा माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा, वो शेर जो 2013 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 14 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में गरजता था, उस शेर को मैंने माननीय प्रधानमंत्री बनते अब मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, एक बूढ़े शेर की शक्ल में देखा।
एक निजी टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार प्रसारित होने के एक दिन बाद कांग्रेस ने सिलसिलेवार तरीके से उनके दावों को खारिज किया। मोदी की विदेश नीति को नाकाम बताते हुए कांग्रेस नेता आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरों से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ।
आखिरकार विदेश नीति, जाना आना, घूमना फिरना, बातचीत करना तो ठीक, लेकिन उसका रिजल्ट जिस वक्त उसकी जरूरत हो उसमें क्या फर्क पड़ा।
आजाद ने किसानों की समस्या, बेरोजगारी और काला धन के मुद्दे पर भी मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने विवादित बयान देने वाले नेताओं को महत्व न देने संबंधी बयान को लेकर भी प्रधानमंत्री की आलोचना की।
उन्होंने आई कोट एंड अनकोट I would like to tell the media not to make heroes out of those people who make such comments. इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब आपसे बताया गया है कि आप उनकी न्यूज मत छापो, उसका मतलब है कि उनको जो करना है करने दो। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की आलोचना किए जाने को अनुचित बताया है। पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि मोदी की नीतियों से भारत लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
गुलाम नबी साहब कई पदों पर रह चुके हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मुझे लगता है उसे अपने से ही समझते हैं। विदेश नीति की सफलताएं देश और विदेश सब जगह स्पष्ट दिखती हैं। यदि भारत के अगर हम देखें तो कई संस्थाओं के सदस्यता अब पूर्ण हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल में, चाहे SCO शंघाई कॉरपोरेशन की बात करें, चाहे हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात करें। अब गुलाम नबी आजाद साहब एक किस्म से पोस्टमार्टम करने की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन वो उस जर्नलिस्ट की जगह बैठकर क्या प्रश्न हो सकते थे ये वो जर्नलिस्ट को बता सकते हैं, भाजपा को नहीं।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि उसे उनकी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मुद्दा राजनीतिक बढ़त हासिल करने का हो तो दावे करने और नसीहत देने का ये सिलसिला थमेगा ऐसा फिलहाल नहीं लगता।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दावों की हवा निकाली तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की गरिमा याद दिलाई। रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। उधर भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR की सदस्यता मिलने के बाद चीन ने बड़े सधे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने ही बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की और भारत के संबंध में चीन के ताज़ा बयान के बारे में और जानकारी मांगी।
चीन का पहले तो दोस्ती बंधुत्व वाली बातें उन्होंने कही हैं फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जहां तक MCTR का सवाल है, जो कंट्रोल रेजिम है उसमें परिवर्तन आया है, इस चीज को हमने ध्यान दिया है, लेकिन हमें ये लगता है कि MTCR इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफिकेशन को रोक सकती या नहीं सकती है इसको अभी भी असेस करना बाकी है। बेसिकली ये है कि उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि MTCR में जाने से भारत अणुशक्ति का दुरुपयोग करेगा या नहीं करेगा, और इसी मुद्दे पर तो उन्होंने NSG में न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में भारत को आने से रोका था ये कहते हुए कि आपने तो ऐसे कोई कटिबद्धता या NPT साइन नहीं किया है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप कटिबद्ध रहोगे। अब भारत जब दूसरे क्लब में ज्वाइन किया है तब उनको बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम ध्यान दे रहे हैं ये बताया उन्होंने।
चीन का जो सरकारी मीडिया है वो तो भारत की जमकर आलोचना कर रहा है।
सरकारी मीडिया को ये लग रहा है कि भारत NSG चूंकि नहीं मिला है तो कोई ना कोई बहाना करके किसी और तरीके से प्रोमिनेंस में आने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की मदद लेने की बात करता है। इस हद तक चले गए हैं कि कुछ भारत के लोग सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ राइटियस है, टेंट्रम मतलब कि नखरे बहुत करते हैं, और ये ज्यादातर भारत के जो नेशनलिस्ट है, BJP का नाम तो नहीं दिया है लेकिन जो लोग नेशनलिस्ट है उनका ये रवैया है, ये स्टेट मीडिया का कहना है।
लेकिन इन बयानों के संदर्भ में आप दोनों देशों के रिश्ते किस तरफ जाते हुए देखते हैं?
फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा है और ये मोदी के इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में कहा है उन्होंने कि हम ये मानते हैं कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छी परिस्थिति में है और हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है वो हमारे मतभेदों से बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा वजनदार है। मिला जुला के मोदी साहब ने भी यही अपने इंटरव्यू में कहा, भारत और चीन की जो रिश्ते हैं उसमें परिवर्तन आ रहे हैं और चीन ये कहना चाहती है कि भारत के साथ हमेशा संपर्क में रहेगी, मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मतभेद है उसमें रास्ता निकालने के लिए हम लोग सिंसियरली कोशिश करेंगे। तो ये मोर और लेस मोदी की भाषा को दोहरा रही है। NSG में भारत को रोकने से भारत को तो नुकसान हुआ लेकिन चीन को भी हुआ, क्योंकि चीन की जो छवि है उसमें एक और धब्बा लग गया कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को आप रोक रहे हो और एक छिछले कारण देकर आप रोक रहे हो। तो इसमें चीन को पता था कि काफी बदनामी हो और ये भी पता था कि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि भारत को नाखुश करना भी एक रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भारत को इसलिए रोका उन्होंने। पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज्यादा माने रखता है कई कारणों से, तो बहुत ही जरूरी है उनको पाकिस्तान के साथ में रहना। एक तरह से वो दबे हुए हैं पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उससे, लेकिन उसके साथ साथ वो भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखना भी चाहते हैं, तो दोनों बीच में चीन फंसी हुई है कुछ एक हद से देखा जाए तो।
तनातनी के बाद चीन ने कहा भारत के साथ लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। ये थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार सहबल दास गुप्ता।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आज है 29 जून दिन बुधवार, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को एक बार फिर संदीप सोनी का नमस्कार। जिन श्रोताओं ने अपना रेडियो अभी अभी ट्यून किया है, हम उन्हें बताना चाहेंगे पहली बड़ी खबर आज की। तुर्की के इस्तांबुल में अतातुर्क हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 36 लोग मारे गए हैं और लगभग 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस आत्मघाती हमले की अभी तक किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है। और कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां जानने का। हरिता कांडपाल स्टूडियो में मेरे सामने बैठी हैं, कई अखबार उनके हाथ में हैं।
जी संदीप, आज के अखबारों की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज होने की खबर के अलावा तेलंगाना में 9 जजों को निलंबित किए जाने के बाद हाईकोर्ट में जो बंद का ऐलान किया गया है, इसके अलावा यूरोपीय नेताओं ने कहा कि यूरोपीय संघ से जल्दी बाहर हो ब्रिटेन, इस तरह की कई खबरें प्रमुखता से छाई हुई हैं। सबसे पहले खबर मैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के पहले पन्ने पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में हर 3 में से 1 कंपनी पर उनकी कीमत से ज़्यादा कर्ज है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई कंपनियों पर ऋण इतना है कि उनकी मार्केट कैप मतलब जो उनकी पूंजी है उससे 31 गुना ज़्यादा उनका ऋण है, और अगर ये कंपनियां अपना एक एक शेयर भी बेच दें तो ये अपना ऋण नहीं चुका सकती। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय कंपनियां अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर रही हैं, और ये एक चिंताजनक स्थिति है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा बात करें साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर, तो अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बाद अदालत ने साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका रद्द की। अखबार लिखता है कि एनआईए को झटका देते हुए मालेगांव में 2008 में हुए धमाकों के मामले में अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत देने से इनकार किया और कहा कि प्रथम दृष्टया उन पर मामला बनता है, इसलिए उन पर ये आरोपों को खारिज करना, उस पर सवाल उठते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि अदालत ने मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा की भूमिका की ठीक से जांच नहीं करने के लिए एनआईए को लताड़ा है और जमानत देने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात करते हैं द पायनियर के पहले पन्ने पर, मेरी नज़र पड़ती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पर, सिर पर फूल लगाए हुए
कुछ,
ये तस्वीर
कुछ मुकुट लग रहा है।
जी कुछ मुकुट जैसा ये तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही और सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी मजाक उड़ाया गया। दरअसल वो गए हुए हैं गोवा, और गोवा के वास्को में अरविंद केजरीवाल ने ये तस्वीर खिंचवाई है। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने की कोशिश में है और अभी से उसकी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर, एक खबर है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की, उनके माता पिता का पक्ष दिया गया है। उन्होंने उनकी माँ मैथिली ने कहा है कि सवाल करने हैं तो उनकी नीतियों और कामकाज पर करो, उनकी देशभक्ति पर सवाल क्यों खड़े करते हो। इसके अलावा उनके पिता जो कि एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं आर गोविंद राजन, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार रघुराम राजन पर हो रहे प्रहारों के मामले में पहले दखल देती तो शायद वो अपने पद छोड़ने के बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते।
सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ इशारा।
सुब्रमण्यम स्वामी
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इनकी देशभक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं है।
नहीं है जी, तो सुब्रमण्यम स्वामी के प्रहारों पर ये चर्चा अभी तक जारी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने हैदराबाद हाई कोर्ट से जुड़ी खबर छापी है, लिखा है कि 11 जज सस्पेंड किए गए और विरोध में 200 जज छुट्टी पर चले गए हैं, 125 जजों ने इस्तीफा दिया है, आज हाई कोर्ट बंद। हिंदुस्तान अखबार ने भी लिखा है कि 300 से ज्यादा जज छुट्टी पर चले गए हैं, मंगलवार को हैदराबाद हाई कोर्ट ने
बिल्कुल
अनुशासन।
अगले कार्यक्रम विश्व भारती में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिता कांडपाल आपको बता रही थी आज के अखबारों में, दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है। और श्रोताओं, अब ये बताइए कि क्या कभी आपने सोचा है कि दंगों के बाद कुछ लोग कभी अपने घरों को वापस क्यों नहीं जा पाते। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद उत्तर प्रदेश में कैराना वाले इलाके में जब गए तो उन्हें इसका पता चला। सुनिए उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
कैराना बाईपास से मैं 10 किलोमीटर अंदर एक सड़क पर आया हूँ। रास्ते में कई गांव मुझे मिले, गांव में सभी घर मुझे पक्के मिले, अच्छे घर थे और खेतों में भी काफ़ी हरियाली थी, लेकिन कुछ ऐसे घर मिले जो कच्चे थे और दूर से ही लग रहा था कि इनकी हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल एक एक कमरे का घर है और किसी की छत टूटी हुई है, किसी में छत है ही नहीं। तो जब मैं यहाँ आया तो हमें पता चला कि ये उन लोगों का घर है जो 2013 के दंगों में पीड़ित थे। अच्छा, आपका नाम क्या है?
शबाना है जी।
शबाना, और आप लोग किस गांव से यहाँ पर आए हैं?
हम सिसोली से आए हुए हैं।
इस बस्ती में कितने लोग हैं?
100 से तो ज्यादा, 150 होंगे।
यहाँ पर को तकरीबन 3 साल हो गए?
3 साल हो गया जी, चौथी साल लग जाएगी अब जी।
वापस सिसोली जाने का इरादा?
नहीं जी, हम नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाएंगे?
नहीं जी, वहाँ का हालात बढ़िया नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
अभी भी हालात ठीक नहीं?
नहीं जी।
आप गए?
हम गए थे, लेकिन वहाँ पे जाते हुए इंसान जो जाट लोग हैं वे गालियाँ देते हैं, तो जाके क्या करेंगे, यहाँ हम सेफ है।
कितने हैं आपके परिवार में?
हमारे परिवार में 9 आदमी हैं।
आपके पति हैं?
हाँ जी, पति।
आप हैं?
हाँ जी।
और
मेरे 3 बच्चे हैं, मम्मी है, डैडी है, भैया है, भाभी है, एक भैया और है।
पति आपके क्या करते हैं?
मेरे पति मजदूरी करते हैं।
स्कूल बच्चे जाते हैं आपके?
हाँ जी, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं फिलहाल।
कौन से स्कूल?
यहीं पे अभी खुला है इस्लामिया मदरसा, स्कूल खुला है अभी, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है बच्चा मेरा। सरकारी में कोई सुविधा नहीं थी, इस वजह से हमने अपने बच्चे हटा लिए वहाँ से। वहाँ पे बच्चों को हम बच्चे मारते थे, इस वजह से हमने समझा सेफ हमारे बच्चे वैसे में रहेंगे।
तो हमने यहाँ पर जो क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या
जी? यहाँ पे उर्दू भी है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ है।
शबाना के बच्चों के अलावा बस्ती के कई दूसरे बच्चे भी इस्लामिया पब्लिक स्कूल या स्थानीय मदरसों में पढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों में मुस्लिम समुदाय बहुमत में है। हमने लगभग हर गांव में मदरसे देखे, उन गांवों में भी जहां से मुसलमान दंगों के बाद पलायन कर चुके हैं। कई हिंदुओं का दावा है कि इन मदरसों के कारण मुसलमान कट्टर हुए हैं। सुरेंद्र सिंह बालियान कुर्बी गाँव के एक वरिष्ठ जाट किसान हैं। वो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पिता भी हैं। वो मदरसों से चिंतित हैं।
ये जो हुआ है ना, ये सब धार्मिक कट्टरता से, कपड़ों से या पहनने रहने से, कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं। लेकिन जब से यहाँ तावली में एक मदरसा बना, जब से ही गोल टोपी, नीचे कुर्ते, ऊंचे पजामे, एक पहचान बन गई, ये मुस्लिम है, हम हिंदू। जब से मदरसे वाले हैं, इन्होंने पीट पीटक नमाज पढ़ो, मतलब ये कट्टरता भर दी उनके।
इसी तरह के हुलिये वाले हमें एक मदरसे में कई लोग नजर आए। मदरसा फतहुल उलूम बंद था, लेकिन इसके बावजूद कई बच्चे और शिक्षक वहाँ मौजूद थे।
मैं बीबीसी से आया हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पहले के मुसलमान बहुत अच्छे थे, अभी जो जब से मदरसे वगैरह खुलने लगे हैं, ये सब गड़बड़ शुरू हो गए, कट्टरवादी हो गए हैं सब। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम महफूज रहमान।
महफूज रहमान
जी।
तो ये बताइए कि यहाँ पे इसके अलावा क्या तालीम हासिल की आपने?
मौलवत का पहले साल की तालीम हासिल की थी यहाँ पे।
तो यहाँ से पढ़ के आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे?
यहाँ से पढ़कर हम देवबंद जाएंगे सीधे।
और वहाँ से तालीम हासिल करके फिर क्या करेंगे?
बस फिर तो यही दीन की खिदमत करेंगे।
मस्जिद में मौलवी बन जाएंगे, ये नमाज पढ़ाएंगे या अजान देंगे या क्या करेंगे?
मदरसों में पढ़ाएंगे।
मदरसों में पढ़ाएंगे जी। लोग बोलते हैं ना कि मदरसों में पढ़ के लोग कट्टरवादी होते जा रहे हैं,
बारे में नहीं मालूम है।
आप बता सकते हैं जी? आप अपना नाम बता दीजिए।
मोहम्मद कुर्बान, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ।
अच्छा, आप पढ़ाते हैं, सॉरी। ये जो इल्ज़ाम तराशी है, उसका जवाब क्या है?
इल्ज़ाम तराशी मतलब?
मतलब ये कि ये लोग कह रहे हैं, हिंदू भाइयों से जब मैंने बात की उस गांव में, वो ये कहते हैं कि जी सारा माहौल सही था यहाँ पर, पहले हिंदू मुस्लिम मिल के रहते थे, और अब जो है मुसलमानों में कट्टरपन आ गया है, और उसकी वजह है ये सब मदरसे जो खुल गए इतने हर गाँव में। ये
मदरसा तो एक ऐसी चीज़ है कि सबको सही लाइन पर लाने के लिए, और यानी कि सीधे रास्ते, कट्टरपंथी कोई मदरसे में नहीं रहता है। मदरसे वालों का दिल इतना नरम होता है कि किसी का दिल इतना नरम नहीं होता है।
ये इनका हुलिया देखिए, इसी तरह के लोगों के बारे में बताते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या इस्लाम फैला रहा है या हमें भी कन्वर्ट कर देगा या क्या, इस तरह के जो उनके तासुरात हो रहे हैं।
मदरसा तालीम के लिए अच्छी चीज़ है, हमारे मजहब में मदरसे के लिए बहुत ज़रूरी है मदरसा हमारे इसमें। और दूसरी बात यह है कि वो जो मदरसा वो स्कूल चलाते हैं, वो कॉलेज चलाते हैं, उनमें भी तो वो भी कुछ सिखाते होंगे ना अपने मजहब के लिए, वो भी तो कुछ बतलाते होंगे। हम भी इसीलिए अपने मजहब के लिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा कुछ सिखाते हैं।
शबाना के बच्चे इसी तरह के मदरसे में जाते हैं। वो बोलने में जितनी तेज हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही उत्साहित और महत्वाकांक्षी। शबाना के बच्चों का भविष्य इसी तरह के मदरसों की पढ़ाई पर टिका है। जुबैर अहमद, BBC, कैराना।
और अब बात खेल जगत की।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से BBC हिंदी सेवा की खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन का दूसरा दिन बारिश से प्रभावित रहा। शाम होते होते फुहारें पड़ने लगीं, जिससे कुछ मैचों को बीच में ही रोकना पड़ा और कुछ रद्द कर दिए गए। एक केवल सेंटर कोर्ट पर कवर लगा था, जिससे वहां बारिश के बाद भी मैचों पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन सारे बड़े खिलाड़ियों ने अपने पहले दौर के मैच जीत लिए। पुरुषों के वर्ग में सेंटर कोर्ट पर दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे के सामने थे उन्हीं के हमवतन लियाम ब्रोडी, जो दुनिया के 235वें नंबर के खिलाड़ी हैं। लगभग पौने दो घंटे तक चला मैच एंडी मरे ने सीधे सेटों में 6-2, 6-3, 6-4 से जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। मरे अपने पहले मैच से संतुष्ट दिखे। हाँ, मेरी सर्विस अच्छी रही। वैसे मैं डिफेंस को और बेहतर कर सकता था, पर पहला मैच हमेशा थोड़ा अलग होता है। तेज हवा भी चल रही थी। मैं लियम के साथ कोई मैच नहीं खेला, पर मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता था, तो ऐसे में जब आप किसी को अच्छे से जानते हो तो खेलना आसान नहीं होता। एंडी मरे के शब्द। चौथे सीट के खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका भी दूसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। वहां अब उनका मुकाबला अर्जेंटीना के खुआन मार्टिन डेल पोत्रो से होगा। वावरिंका ने भी माना कि डेल पोत्रो एक मजबूत खिलाड़ी हैं।
Sometimes it happened that I used to play really good in Grand Slam.
मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में जीतते रहना जरूरी है। अब मेरा मुकाबला डेल पोत्रो से है, जो एक मजबूत खिलाड़ी हैं, तो टक्कर आसान नहीं होगी। स्टैन वावरिंका के शब्द। ऑस्ट्रेलिया के 15वीं सीट के खिलाड़ी निक किर्गियोस भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। किर्गियोस की टक्कर अब जर्मनी के डस्टिन ब्राउन से होगी। महिलाओं के वर्ग में पिछले साल की विजेता और दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के सरीना विलियम्स ने अपना पहले दौर का मैच जीत लिया। सरीना के सामने थी 148वीं सीट की स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी आमरा सादिकोविच। सेंटर कोर्ट पर 34 वर्षीय सरीना के खेल में वो आक्रामकता नहीं दिखाई दी जिसके लिए वो जानी जाती हैं। मगर 6 बार की विंबलडन चैंपियन सरीना ने आखिरकार मैच 6-2, 6-4 से जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। मगर महिलाओं के वर्ग में एक समय में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी रहीं डेनमार्क की कैरोलाइन वोजनियास्की अपने पहले ही राउंड में हार गईं। उन्हें रूस की 14वीं सीट की खिलाड़ी स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा ने 7-5, 6-4 से हराया। अब विंबलडन के तीसरे दिन आज पुरुषों के वर्ग में नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, जापान के निशिकोरी और क्रोएशिया के मारिन चिलिच के मैचों पर नजर रहेगी। वहीं महिलाओं के वर्ग में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा, पोलैंड की एग्नियस्का राडवांस्का, रोमानिया की सिमोना हालेप और वीनस विलियम्स कोर्ट पर नजर आएंगी। तीसरे दिन आज भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस भी मेंस डबल्स में पोलैंड के मार्सिन मात्कोवस्की के साथ अपना पहले दौर का मैच खेलेंगे। अपूर्व कृष्ण, BBC, विंबलडन।
अपनी घड़ी का समय हमारे स्टूडियो की घड़ी से मिलाइए। भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7 और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। लेकिन कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। तुर्की के इस्तांबुल शहर में अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिदायीन हमला हुआ है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा, इस हमले में अब तक करीब 36 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रेक्सिट के फैसले के बाद पहली बार यूरोपीय नेताओं से ब्रसल्स में मुलाकात की। डेविड कैमरन ने कहा कि बाहर रहते हुए भी ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बेहतर और नजदीकी रिश्तों की उम्मीद करता है। ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। जाम्बिया में पुलिस ने एक बड़े अखबार के संपादक को उनकी पत्नी और एक डिप्टी संपादक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जाम्बिया के राजस्व प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते पोस्ट नाम के अखबार को ये कहते हुए बंद करवा दिया था कि अखबार पर कई लाख डॉलरों का टैक्स बकाया है। अखबार के प्रबंधन का कहना है कि ये टैक्स का मामला नहीं बल्कि अगस्त में होने वाले चुनाव से पहले प्रेस की आज़ादी को रौंदने का मामला है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।